ये अब आखिर में हम देखेंगे सूरत हूद का नज़्मे जली, वही चीज़ जो हम एक पेज पर एक माइंड मैप की सूरत में देख चुके, इसको इंशाल्लाह ताला हम लोग अब देखेंगे जुमलों की सूरत में। बात वही है जो हो चुकी, लेकिन आप देखेंगे एक चीज़ को इतनी मुख्तलिफ दफ़ा पढ़ना, ये सिर्फ़ इसलिए कि हमारे अंदर इल्मी पुख्तगी आ जाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान के साथ इस तरह जोड़ दे कि हमारे दिल दिमाग पर ये कुरान लिखा जाए। सूरत हूद 8 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है। पहला आयत 1 से 24, 1 to 24 तंबी है, जिसमें तौहीद इबादत भी और इस्तिग़फ़ार का मुतालबा है। कुरान हकीम व ख़बीर हस्ती की तरफ से, जिसमें पहले मुहकम यानी पुख्ता और ठोस और फिर इसके बाद मुफस्सिल आयात है। सबसे पहले तौहीद इबादत का मुतालबा है, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, और फिर इस्तिग़फ़ार का मुतालबा है। इस्तिग़फ़ार और तौबा से कौमों को एक वक्त मुकर्रर तक मज़ीद मोहलत मिल जाती है, फ़ज़ल में इजाफ़ा किया जाता है। आयत 3 है, युमत्तिउकुम मतान हसनन इला अजल मुसम्मा, फिर यौम अज़ाब से डराया गया, यानी तुमको फ़ायदा देगा एक अच्छा फ़ायदा एक ख़ास मुद्दत तक। आप देखिए आज कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कोई बीमारियों में, कोई दुखों में, सबका इलाज क्या है? दिल की गहराई से तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के इल्म की वजाहत करके इसकी खालकियत और कुदरत साबित की गई और बताया गया कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक का मकसद आजमाइश हुस्न अमल है। मुशरिकीन ने मक्का जो मुनकरीन आखरत भी थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सहर यानी जादू करार देते थे कि मौत के बाद एक दिन इंसानों को ज़िंदा करके उठाया जाएगा। आयत नंबर 7, साबिर और गैर साबिर लोगों के फ़र्क को वाज़ह किया गया कि ये साबिर दुख और सुख दोनों घड़ियों में हमेशा शुक्र का रवैया अख्तियार करते हैं। मुशरिकीन की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर कुरान के बाज़ हिस्सों को बयान करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज़ नहीं कर सकते। कुरैश के एतराज़ात, कुरैश मक्का ने यह एतराज़ किया था कि आपके साथ कोई ख़जाना या कोई फ़रिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ुद से झूठ घड़ लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि इस तरह की 10 सूरतें तसनीफ़ करके दिखाओ, वरना फिर इन्हें कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लीम करके दावते तौहीद को कबूल कर लेना चाहिए। आयत 14, अल्लाह ताला की सुन्नत बयान की गई कि वह दुनिया परस्तों को दुनिया अता करता है, लेकिन इनके लिए आखरत में आग होगी। खुदा के रास्तों से रोकने वाले और अल्लाह के रास्तों को टेढ़ा करने वाले अल्लाह ताला को बेबस नहीं कर सकते। कोई वली इनकी मदद नहीं कर सकता, इन्हें दोहरा अजाब दिया जाएगा। आयत 20, अहले ईमान और अहले कुफर की मिसाल आँख वाले और अंधे और फिर सुनने वाले और बहरे की सी है, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। आयत 24, सच काफिर और ईमान वाला बराबर हो सकते हैं? अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या पता चला कि इल्म लेने वाला और इल्म ना लेने वाला भी बराबर नहीं होता। फिर आयात 25 से 49, दूसरा पैराग्राफ, इसमें हज़रत नूह की दावत और कौम नूह की हलाकत का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है, इनसे पहले नबी हुआ करते थे। इनका ज़माना गालिबा 3500 कबल मसीह है। हज़रत नूह ने अपनी कौम को सबसे पहले तौहीद की दावत दी। इनकी कौम के मुशरिक मला लीडरों ने एतराज़ किया कि आप हमारी तरह के इंसान हैं, हम आपको रसूल तस्लीम नहीं करते, आप पर ईमान लाने वाले अब हमारी कौम के अराजिल छोटे और गरीब लोग हैं, आपको हम पर कोई ख़ास फजीलत अता नहीं की गई, आप झूठे हैं। हज़रत नूह इंसान की मज़हबी आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ फेथ के कायल थे। उन्होंने कहा कि हम आपकी नागवारी की हालत में आप लोगों पर दावत तौहीद को मुसल्लत नहीं करेंगे, अलबत्ता मैं गरीब मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ सकता। हज़रत नूह ने अपने बारे में वजाहत कर दी कि ना तो मेरे पास अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, ना मेरे पास गैब का इल्म है, और ना ही मेरा ये दावा है कि मैं फ़रिश्ता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 2100 साल तक तबलीग करते रहे। बिलाखर लीडरों ने कहा कि अजाब लाकर दिखाइए, फातिना बीमा ताईदुना, बस ले आओ वो जिसका तुम हमसे वादा करते हो। फिर नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि आज के बाद कोई आदमी मजीद ईमान नहीं लाएगा। मुश्रिक लीडर कश्ती का मजाक उड़ाने लगे, फिर अल्लाह का अजाब आ गया, काफिरों को गर्क कर दिया गया और कश्ती वाले मुसलमान बचा लिए गए। हज़रत नूह का बेटा एक मादा परस्त काफिर था, वो पहाड़ पर चढ़ गया। इसका ख्याल था कि नाऊज़ु बिल्ला अल्लाह नहीं पकड़ सकता, बल्कि पहाड़ इसे पानी से बचा सकता है। यासिमुनी मिनल माई, वो बचा लेगा मुझको पानी से, यानी पहाड़ जो है मुझे पानी से बचा लेगा। वो तूफ़ान में गर्क हो गया। यहाँ आप देखिए कि हज़रत नूह के लिए कितना मुश्किल वक्त था ना, बेटा कहीं भी डूब सकता था, लेकिन अल्लाह ने नूह को भी आजमाना था और हमें भी ये दिखाना था, 950 साल की तबलीग करके भी नूह का अल्लाह पे इख्तियार नहीं है कि एक अपने ही बेटे को बचा ले। आज हम ज़रा सी बात करके कहते हैं फ़लाँ बुज़ुर्ग की अल्लाह पे चलती है, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह उनकी मोड़ता नहीं, अल्लाह के ऊपर उनका बड़ा प्रेशर है ये वो। किसी का अल्लाह पे प्रेशर नहीं है, अल्लाह जो चाहे वो कर ले। हज़रत नूह के किस्से से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का वाकिफ़ नहीं थे। मुशरिकीन को कानून हलाकत से इबरत हासिल करने का मशवरा दिया गया और रसूल करीम को मुखालफत के इस माहौल में सब्र व इस्तकामत की हिदायत की गई और तसल्ली दी गई कि बेहतरीन आकबत और इंजाम सिर्फ मुत्तकीन ही के लिए है। फसबिर इन्नल आकिबत लिल मुत्तकीन, बस सब्र कीजिए, बेशक आखिरी इंजाम मुत्तकियों का ही होगा। सारी बात से क्या पता चला? हज़रत नूह इतने साल की तबलीग के बाद भी बहुत थोड़े से लोगों को अल्लाह की तरफ आता देखते हैं। तो याद रखिए, रिजल्ट्स पे नज़र नहीं रखनी, एफर्ट्स को देखिए। कोशिशें तो ली जाएंगी, वन अलैहिस्सल इंसान इल्ला मासा। बस दफ़ा इंसान को उसकी कोशिशों का दुनिया में बहुत बदला मिलता है, बस दफ़ा नहीं मिलता। खुशी तो होती है कोशिशों का अच्छा अंजाम देखकर, लेकिन डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा कोई काम करें और रिजल्ट्स अच्छे ना आए तो लोग पीछे हो जाते हैं, कहते नहीं फ़ायदा ही कोई नहीं, अब होगा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपको मुझे कोशिश का अजर मिलेगा इंशाल्लाह। फिर आयत 50 से 60, तीसरा पैराग्राफ, हज़रत हूद की दावत और कौम आद की हलाकत। कौम नूह की हलाकत के तकरीबन 500 साल बाद, देखिए कितनी बड़ी बड़ी सदियां हैं, देखने में लगता है बस इधर कौम नूह गई और उधर कौम आद आ गई, 500 साल बाद। तकरीबन 5 सदियां थोड़ी नहीं होती, कितनी नस्लें गुजरी होंगी? एक सदी में अमूमन 2 या 3 नस्लें होती हैं ना, तो 500 साल में तकरीबन 15 नस्लें गुजरी होंगी। फिर कहीं जाकर इस कौम की बारी आई, कौन? कौमे आद को जानशीन बनाया गया, ये मुशरिक थे। इनके रसूल यानी हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी। हज़रत हूद ने इन्हें शिर्क से बचने और गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार की दावत दी। इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल बयान किए गए कि इससे बारिशें होंगी, मौजूदा क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा, लेकिन वो अपने आलिहा यानी खुदाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत हूद को अल्लाह पर कामिल भरोसा था, उन्होंने इन्हें समझाया और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हलाक करके दूसरी कौम को उठा सकता है। वयस्तख़लिफ़ु रब्बी कौमन गैरकुम, कौम आद ने अपने रब की नाशुक्री की, इसकी आयात का इनकार किया, रसूलों की नाफरमानी की। ये वो कौम थी जो हर जब्बार और अनीद यानी इस्लाम से इनाद रखने वाले लीडर्स के अहकामात की पैरवी करती थी। अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में इस कौम पर लानत की, इन पर अजाब नाजिल किया गया। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से हज़रत हूद और इन पर ईमान लाने वाले नेक लोगों को बचा लिया। देख लीजिए, नाम पलट जाते हैं, बाकी कौमें और उनके नबी दोनों के हालात आलमोस्ट सेम होते हैं। फिर आयत 61 से 68, 61 से 68 तक हज़रत सालेह की दावत और कौम समूद की हलाकत का जिक्र है। हज़रत हूद और अहले ईमान अरब के जनूबी इलाकों से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के शुमाल में आबाद हो गए। आजकल ये इलाका मदायने सालेह कहलाता है। इनकी नस्ल समूद कहलाई, इन्हें आदे सानी भी कहते हैं। सानी क्या होता है? दूसरा। कौम आद के बाद वाले लोग यानी दूसरे आदि। कौम हूद की हलाकत के तकरीबन 500 साल बाद कौम समूद की आजमाइश का वक्त आ पहुँचा। कौम समूद में हज़रत सालेह को मबूस किया गया। हज़रत सालेह ने भी अपनी कौम को तौबा इस्तग़फ़ार की दावत दी, लेकिन ये अपने बाप दादा के अकायद और रसूमात को छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने शक और रैब का मुजाहरा किया। आजमाइश के लिए अल्लाह ने इनके पास एक ऊँटनी भेजी और हुक्म दिया कि इसे बुरी नीयत से हाथ ना लगाना और इसको ज़मीन पर खाने से ना रोकना, लेकिन उन्होंने इसे मार डाला। इस कौम को 3 दिन की मोहलत दी गई, फिर इनको एक खौफनाक धमाके से हलाक कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से हज़रत सालेह और इन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया। इसके बाद आए 69 से 83 में हज़रत लूत की दावत और कौम लूत की हलाकत। अल्लाह ताला का कानून है कि वो नेक लोगों को बचाकर वक्फे वक्फे से बदकारों को हलाक कर देता है। यही इसका कानून है, जजा व सज़ा यानी लॉ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। यही दलीले क़यामत और दलीले जन्नत और दोजख भी है। इसके फरिश्ते भी कभी जजा और कभी सज़ा का मूजिब बन जाते हैं। हज़रत इब्राहिम के पास आने वाले फरिश्ते इन्हें बेटे की बिशारत देने के बाद इनके भतीजे हज़रत लूत की कौम को हलाक करने के लिए भेजे गए। हज़रत इब्राहिम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, वो बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने एक भुना हुआ बछड़ा इनकी खिदमत में पेश किया। अच्छा, बछड़ा के बिछड़ा?
बछड़ा
बछड़ा क्या होता है?
बछड़ा
गाय का बच्चा, ठीक है। खाने से इनकार पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये फरिश्ते हैं। वो डर गए। फरिश्तों ने तसल्ली दी और इन्हें बेटे इसहाक और पोते याकूब की बिशारत दी। इस पर हज़रत इब्राहिम की बीवी ने हैरत का इजहार किया कि मैं कैसे माँ बन सकती हूँ जबकि मैं बूढ़ी भी हूँ और बाँझ भी हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। फरिश्तों ने जवाब दिया कि आपके ख़ानदान पर अल्लाह की रहमत और बरकात हैं, ताज्जुब न करो, ऐसा ही होगा। फरिश्तों ने बताया कि इनकी अगली मंजिल कौमे लूत की तरफ है, वो हलाक की जाएगी। इस खबर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरार करने लगे। उन्हें बताया गया कि अजाब का फैसला हो चुका है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। आयत 76। हज़रत लूत के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में पहुंचे। ये खबर सुनकर इनकी कौम इनके घर की तरफ लपकी। इन्हें औरतों से कोई रग़बत नहीं थी, वो मर्दों के पीछे दीवाने थे। हज़रत लूत ने अल्लाह का खौफ दिलाया, लड़कियों से शादी की पेशकश की और कहा कि मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुस्वा मत करो। लेकिन कौम पागल हो चुकी थी। उन्होंने कहा, आपको मालूम है कि हमें लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं। इंतहाई बेबसी के आलम में हज़रत लूत ने फरमाया, काश मेरे पास कुव्वत और ताकत होती। हज़रत लूत को हुक्म दिया गया कि वह अहले ईमान को लेकर रातों रात बस्ती से निकल जाएं, क्योंकि सुबह से पहले अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। और जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो बस्ती को ऊंधा कर दिया गया और इन पर मट्टी के पत्थरों से बारिश की गई और बिलाहर हलाक कर दिया गया। ये मंजर कहाँ है? आयत 82। फलम्मा जामरूना जालना आलिया साफिलहा वमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद। बस जब आ गया हमारा हुक्म, हमने कर दिया उनके ऊपर के को नीचे उनका, समझ गए, यानी छतें नीचे आ गईं, फर्श ऊपर चले गए, और हमने बरसात दिए उन पर पत्थर मिट्टी के तह बतह। अल्लाह अकबर। सोचिए जिस चीज़ को अल्लाह इस तरह डिस्क्राइब करें वो क्या चीज़ होगी उस वक्त, उस दिन क्या हुआ होगा। अगर आज का दौर हो और कोई अखबार हो उस दिन की, तो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और किस तरीके से एक खौफ का मंजर होगा। पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई। आज तो कहते हैं जी जलजला आया था, 200 मर गए, 1000 चले गए, तो उस दौर में तो जितने थे सारे ही चले गए। खबरें पढ़ने वाला कोई नहीं रहा, खबरें सुनने वाला कोई नहीं रहा। ये आज अल्लाह का अपनी नबी की उम्मत पे ये रहम है कि उम्मत पे इज्तमाई अजाब नहीं आता। ये वाक़या गालिबा 2100 कबल मसीह का है। कौम लूत बहरे मुर्दार के जनूब में यह बात थी, यानी डेड सी। इनसे सरा करीब ही जनूब में हज़रत शुएब की कौम मदियन और तबूक में असाबुल ऐका आबाद थे। तो क्या पता चला कि पिछली कौमें अल्लाह की पकड़ का शिकार हुईं। फिर आयत 84 से 95 में कौम शुएब और हज़रत शुएब का जिक्र है। हज़रत शुएब असहाबे मदियन और असहाबुल ऐका की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। याद रखिए इस कौम के दो नाम, असहाबे मदियन और असहाबुल ऐका। ऐका क्या होता है? जंगल, बन वाले, यानी ये कौम जहाँ रहती थी वहाँ जंगल था। हज़रत शुएब ने भी सबसे पहले अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। इन्हें नाप तोल में डंडी मारने से रोका, अल्लाह के अजाब से डराया। ये कौम रिस्क हराम की खूगर थी। कौम से कहा गया, बकीयतुल्लाह खैरुल्लकुम, थोड़ी बहुत हलाल बचत कसीर हराम से बेहतर होती है। आयत 86। कौम शुएब सेक्युलर जहन की हामिल थी। उन्होंने हज़रत शुएब से कहा, आप अपनी नमाजों से काम रखिए, हमें बाप दादा के तरीक़े परस्तिश से मना ना कीजिए। इनका ख्याल था कि मज़हब और अहले मज़हब का माली और इक्तसादी उमूर में क्या दखल हो सकता है। आयत 87। हम अपनी मनमानी करेंगे। आज भी लोग यही कहते हैं ना, मौलवी नमाज़ें पढ़ें, जमात कराएं, उनको क्या लगे माली मामलात से, इनको आज के इकोनॉमिक्स का क्या पता और आज के बैंक सिस्टम को ये क्या जाने। तो याद रखिए ये भी एक तकब्बुर होता है, और इस तकब्बुर को तोड़ने के लिए दीनदारों को दुनियावी उलूम भी सीखने चाहिए ताकि कोई उनको इस तरह का ताना न दे सके। हज़रत शुएब ने बकदरे तौफीक व इस्तेदात इस्लाही कोशिशें की। वमा उरीदु इल्लल इस्लाह हमस्ततातु, और नहीं मेरा इरादा मगर इस्लाह का जितनी मैं कर सकूं। उन्होंने भी अपनी कौम को तौबा इस्तिग़फ़ार की दावत दी। कौम नूह, कौम हूद और सालेह की कौम की हलाकत की तारीख से डराया। उन्होंने कहा कि आपकी बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती, आप हमारी बिरादरी के कमज़ोर आदमी हैं। अगर आपकी बिरादरी ना होती तो हम आपको संसार कर देते। फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से हज़रत शुएब और इन पर ईमान लाने वाले लोगों को बचा लिया। ये देखिए ना अल्लाह के वजूद का कितना बड़ा सबूत है। सारे मर रहे हैं और चंद लोग बच रहे हैं, सुभान अल्लाह। और इसके बाद आयत 96 से 99, सातवां पैराग्राफ, हज़रत मूसा की दावत और आले फ़िरौन की हलाकत की तफसील है। قوم شعیب کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی فوجی حکومت کے ذمہ داروں یعنی ملک کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ فرعون کے ظالمانہ احکام کی پیروی کیا کرتے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ اور پھر آیت 100 سے 123، آٹھواں اور آخری پیراگراف، کنکلیوژن۔ اتنی قوموں کی ہلاکت کے بعد کیا ہوگا، اب آپ خود سوچئے۔ اس آخری اور اختتامی حصے میں مختلف قوموں کی ہلاکت پر تبصرہ، قریش کو عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی، وقفے وقفے سے یکے بہ دیگرے، قوم نو یعنی 3500 قبل مسیح، قوم عاد 3000 قبل مسیح، قوم سمود 2500 قبل مسیح۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر قوم کے بیچ میں عموماً 500 سال کا فرق ہے۔ پھر قوم لوط 2100 قبل مسیح، ان دونوں میں 400 سال کا فرق ہے، اور قوم شعیب 1400 قبل مسیح، ادھر بھی 5 سال ہیں، اور قوم شعیب 1250 قبل مسیح میں ہلاک ہوئی، یعنی یہاں تقریباً 150 سال کا فرق ہے۔ آپ ذرا یہ سارے جمع کریں، کتنے سو سال ہو گئے نبیوں کو آئے، دنیا کو بنے، اور اس سے بھی پیچھے کب کی دنیا چل رہی تھی، کتنی پرانی ہے یہ دنیا، لیکن اس کے باوجود اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ویسے تو ہم پرانی چیزیں اتار اتار پھینکتے ہیں، پرانا فرنیچر، پرانا سٹائل، اولڈ فیشن، تو یہ دنیا کوئی نئی ہے، یہ تو بوڑھی ہے، یہ تو جادوگرنی ہے، اور کب سے، اور اس کہتے ہیں کہ یہ دنیا جتنی بوڑھی ہو رہی ہے اتنی خوبصورت ہو رہی ہے، اتنی ترقی کر رہے ہیں، اتنی انوینشنز، اتنی مادی چیزیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آخری حصے میں بڑی خوبصورت آیات ہیں، مثلاً وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تخویف آخرت ہے، یعنی آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے، دوزخ کے عذاب اور جنت کی نعمتوں سے تذکیر کی گئی، شقی اور سعید برابر نہیں ہو سکتے، بدبختوں کے لیے دوزخ ہے اور خوش بختوں کے لیے جنت۔ مشرکین مکہ پر افسوس کیا گیا کہ وہ ان روشن دلیلوں کے باوجود باپ دادا کے عقائد پر قائم ہیں اور شک اور ریب سے کام لے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کیا کہ حکم الہی کے مطابق ثابت قدم رہیے اور کجی سے بچنے کی ہدایت، آیت 112، اس کو نوٹ کریں۔ علماء کے خیال میں یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اللہ کے نبی بوڑھا ہوئے، یعنی اس آیت پہ غور و فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا، یہ ایک رائے ہے، کیونکہ اس میں استقامت کے ساتھ جمے رہنے اور اس کام کو کرتے رہنے کا حکم دیا گیا، ظالم مشرکین کی طرف نہ جھکنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور صبر کی تلقین کی گئی۔ اللہ کی مغفرت کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے اصلاح پسند افراد کا ہر قوم میں ہونا ضروری ہے، آیت 116۔ پھر ہلاکت اقوام کا اصول بتایا گیا، کیا کہ ہلاکت کے بارے میں اللہ کی سنت ہے کہ وہ اصلاحی قوتوں کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی جب کہ وہاں اصلاح کرنے والے لوگ یا چیزیں موجود ہوں۔ وما کان ربک لیہلک القرى بالظلم واہلھا مصلحون، 117۔ اور نہیں ہے آپ کا رب ایسا کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے جب کہ اس کے رہنے والے اصلاح کار ہوں۔ یہ دنیا ایک دار امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم جن و ان سے جہنم کو بھر کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ فریقین اپنے موقف پر اٹل ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ حق و باطل کا فیصلہ فرمائے گا۔ آخری آیت میں کوئی کرے یا نہ کرے، رسول اللہ کو توحید عبادت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس عبادت کرو اس کی اور توکل کرو اس پہ۔ یعنی کتنے خوبصورت جملے پہ سورت پوری ہوتی ہے۔ تو یہ تھی سورت ہود، مرکزی مضمون، قرآن کی دعوت توحید قبول کرتے ہوئے شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جائے گی، ورنہ انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کیا جائے گا۔ تو دل پہ بوجھ آتا ہے، سچی بات ہے، میں خود بھی اس کو پڑھاتے ہوئے محسوس کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی بات جو ہے وہ سچ ہے، کہ واقعی مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اچھی خبریں سننے سے طبیعت خوش ہوتی ہے، بری خبریں سنیں تو طبیعت پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب مستقل ایک مر گیا، دوسرا، اب اکٹھی دو تین موت کی خبریں سنیں تو طبیعت بوجھل ہوتی ہے، کسی کا جھگڑا لڑائی سنیں دیکھیں تو بوجھ بڑھتا ہے۔ इंसान खुद नहीं दुखी होता, उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द वाले भी दुखी होने लग जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इन सूरतों को पढ़ते वक्त भी दिल पे असर रख सकते हैं इसका। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये सूरत पूरी हुई। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।